25 साल पहले एक ऐतिहासिक ब्रिंगिंग देम होम नामक रिपोर्ट ने इंडिजिनियस बच्चों, स्टोलन जनरेशन के उत्तरजीवियों और वंशजों पर पड़े पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया था। इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य सुझाव दिए गए थे, जिसमें शामिल थे राष्ट्र और राज्य संसदों से स्वीकृति और माफी, पुनरावृत्ति के खिलाफ गारंटी, पुनर्वास के उपाय और मौद्रिक मुआवजे। बताया जा रहा है कि आज भी इस पर काम अधूरा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड ने अभी तक इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया है, जिसमें स्टोलन जनरेशन के जीवित लोग, वंशजों और प्रभावित समुदायों के लिए मुआवजा शामिल है। इंडिजिनस और नॉन इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण तब था जब पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने ये कहा था।
We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. We apologise especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities, and their country.
ये हुआ था 13 फरवरी 2008 को, जब पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड संसद में खड़े हुए और स्टोलन जनरेशन की पीढ़ियों और प्रथम राष्ट्र समुदाय के लोगों से माफी मांगी।
For the pain, suffering, and hurt of these stolen generations, their descendants, and for their families left behind, we say sorry. To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry.
योटा योटा के इयन हैम इस माफीनामे को ध्यान से सुन रहे थे। वे केवल 3 सप्ताह के थे जब अपनी माँ से अलग कर दिए गए थे। वे कहते हैं,
I wasn't openly bawling, but I just noticed I had tears running down my face. And then at the end, when he said, Mr. Speaker, I commend the motion to the House, I just wept. I just started weeping. I don't get teary now just even thinking about it. That for me was a breakthrough moment. It was my country acknowledges me for who I am. My country accepts what happened to me, to all of us. We don't have to argue anymore that we exist. That was a breakthrough moment. So the apology was really important.
ये माफीनामा 11 साल पहले फेडरल संसद में पेश की गई ब्रिंगिंग देम होम रिपोर्ट की 54 सिफारिशों में से एक थी। ये रिपोर्ट 1995 की राष्ट्र जांच का परिणाम थी, जो 2 साल तक चली, और इसमें इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाई लोगों के 535 साक्ष्य शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया गया था और वे स्टोलन जेनरेशन के नाम से कहलाने लगे। उन साक्ष्यों में से एक इयन हैम से आया था, जो बताते हैं कि 19 साल की उम्र में जब उन्हें विक्टोरियन एबोरिजिनल चाइल्ड केयर एजेंसी के संपर्क में लाया गया, तब उनके साथ क्या हुआ।
Adopted Aboriginal kid too, you know, it's kind of like you've just popped out of nowhere. You've just blinked into existence because you have no backstory, you have no background, you have nothing. To find your story, to find your connection, that was an incredibly important moment in my life. What I found was that I had 2 brothers and 2 sisters in addition to my adopted brothers and sisters. It was over half an hour, if not 40 minutes in the conversation. She hadn't mentioned it and I hadn't asked, but eventually I did ask. I said, what about my mother and what about my father? And she deliberately not asked, told me until I was ready to ask, which was a really smart thing. So Elaine looked at me and she said, your mother died in 1966 and she never told anybody who your father was. I can never meet these people. One is unknown and the other one that died, and she would have died when I was 2 years old in 1966. That hole of not knowing my mother is still with me today.
इस अनुभव ने हैम को सहायता समूह के माध्यम से अन्य स्टोलन जनरेशन उत्तरजीवियों की मदद करने के लिए प्रेरित भी किया, जिसमें हीलिंग फाउंडेशन स्टोलन जनरेशन रेफरेंस ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका भी शामिल है। उनका एक मुख्य लक्ष्य ब्रिंगिंग देम होम रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिश को लागू करने के लिए काम करना है, जिसमें शामिल हैं क्षतिपूर्ति और मौद्रिक मुआवजे के उपाय।
I think there's a real opportunity for Queensland and Western Australia to come to the high water mark that Victoria set, or maybe even go beyond it. But they need to do it quickly. They need to do it now. Stolen generations, people, we're getting older, you know. I was born in 1964, so I guess I'm at the younger end of those of the stolen generations. I turned 58 in a month, so there's no time to waste.
2018 की एक रिपोर्ट में उन इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाई लोगों के जीवन परिणाम खराब पाए गए जो अपने परिवार से अलग हो गए थे, उनकी तुलना उनसे की गई जो अलग नहीं हुए थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टोलन जनरेशंस एबोरिजिनल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष जिम मॉरिसन स्कूलों में अपनी स्टोलन जनरेशन वंशज की कहानियों को साझा करते हैं।
Well, I've been telling people in a schoolroom situation that I had 30 parents that were removed. Dad was the oldest of 23, mum was one of seven, all removed and put into these awful missions. So I can appreciate now the impact that has made on future generations.
वे बताते हैं कि राज्य में कई स्टोलन जनरेशन सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है।
The loss and grief is constant. It's around the trauma of being removed, but also around the trauma of losing so many family members. So many funerals are happening this year, for example, of people have impacted on by what has happened to their old people. And now, dare I say, if we talk about the lack of aged care services, there's 7,800 Aboriginal people over 50 in Greater Perth, and only 9 of them get a service from an Aboriginal community-controlled organisation. So where are they going then for their in-home service? Or residential service.
Lowitja Institute के चेयर सेल्विन बटन का कहना है कि इंडिजिनस और नॉन इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाई लोगों के जीवन परिणामों में सुधार तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से, और इसे बदलने की जरूरत है।
The things that lead to the significant intergenerational trauma, and if we're not addressing them now, knowing what we know now better than we did 25 years ago, we certainly can do better to build on those original foundations and learn from the mistakes of the past to work out where we go from here. We don't want to be in a place where we're talking about a second wave of a stolen generation. And we hear it often where many, many families and communities talk about child removal as a second wave of a stolen generation. They're the things we want to prevent.
नई एंथनी एल्बनीजी सरकार का कहना है कि वह अगले 3 वर्षों में संसद में एक इंडिजिनस आवाज स्थापित करने के लिए एक जनमत संग्रह के जरिए संविधान को बदलेगी। ये 2024 के मध्य में होने की संभावना है। ये इंडिजिनस नेताओं द्वारा उलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट में निहित उपायों में से एक है। जिम मॉरिसन कहते हैं कि इस समूह में शोक अभी भी जारी है और इंडिजिनस और नॉन इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बीच सुलह के प्रयासों में तेजी लाने की सख्त जरूरत है।
The focus on the bring them home report, the recommendations of 54 of them focus on truth, justice and healing. So truth has to be told in the schools. Our education needs to be improved so school kids understand removal. It's not ancient history, it's current history. They need to understand the justice that needs to come from that, which is reparation or compensation or redress. And then they need to look at what healing is for stolen generation people and the broader community, because the whole colonisation has impacted on all of our Aboriginal people. So truth, justice and healing is important. You can't have healing if you don't have the truth or justice. And, you know, we can't have reconciliation unless we have truth, justice and healing.
SBS News से बीवा कौन की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।